एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने ना दशकों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है।
हाँ बिल्कुल,
एक ऐसी किताब जो विज्ञान के आप कह सकते हैं सबसे आगे की जो सोच है और हजारों साल पुरानी जो हमारी पूर्वी विचारधाराएं हैं उनके बीच एक पुल, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रिज ऑफ कैपरा की बहुत ही मशहूर किताब द डाओ ऑफ फिजिक्स। और ये किताब ना एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि क्या ब्रह्मांड को समझने के हमारे जो सबसे नए वैज्ञानिक तरीके हैं जैसे क्वांटम फिजिक्स, क्या वो उन गहरी सच्चाइयों से मेल खाते हैं जिन्हें पूरब के चिंतकों ने मतलब सदियों पहले महसूस किया था।
सही बात है, और आज के जमाने में तो ये सवाल और भी जरूरी लगता है ना, जहां अक्सर हम देखते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म ये बिल्कुल दो अलग अलग खेमों में बटे हुए लगते हैं।
हाँ बिल्कुल, अलग अलग खांचों में।
तो क्या ये रास्ते सच में इतने अलग हैं या फिर कहीं एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं?
चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कैपरा में कहां ले जाते हैं।
बिल्कुल,
तो सबसे पहले ये जानना दिलचस्प होगा कि ये फ्रिट्ज ऑफ कैपरा हैं कौन जिनकी सोच ने इतनी बड़ी बहस छेड़ी।
हाँ, जानना तो चाहिए। देखिए, वो मूल रूप से ऑस्ट्रिया के हैं, एक जाने माने भौतिक विज्ञानी, मतलब फिजिक्स की ज्ञाता।
अच्छा,
उन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी की है और दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज रिसर्च सेंटर्स में पार्टिकल फिजिक्स पर काम किया है, कण भौतिकी जिसे कहते हैं।
ओके, तो पक्के साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल, लेकिन खास बात यह है कि वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, मतलब विज्ञान में तो वो गहरे उतरे ही, साथ साथ उन्होंने पूर्वी दर्शन जैसे हिंदू, बौद्ध, ताऊ धर्म, इनका भी बहुत गहरा अध्ययन किया है।
अच्छा, ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा यूनिक है।
हाँ, यही दोहरा नजरिया उन्हें खास बनाता है। वो सिर्फ इक्वेशंस नहीं समझते, वो उन पुरानी ज्ञान प्रणालियों की नब्ज भी पहचानते हैं एक तरह से।
और मैंने सुना है उनके साथ एक खास अनुभव भी जुड़ा है।
हाँ, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। कैपरा खुद बताते हैं कि 1969 में वो समंदर किनारे बैठे थे और अचानक उन्हें गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया जैसे पूरा ब्रह्मांड, सारी ऊर्जा एक लगातार नाच रही हो, एक कॉस्मिक डांस।
वाह, कॉस्मिक डांस।
हाँ, और ये नजारा देखते ही उन्हें सीधे भगवान शिव के नटराज रूप की याद आई।
ओ हाँ, नटराज तो ब्रह्मांडीय नर्तक माने जाते हैं, सृष्टि और विनाश का प्रतीक।
बिल्कुल, और कहा जाता है कि बस इसी अनुभव ने, इसी कनेक्शन ने उन्हें ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। वो जटिल गणित वाली भाषा और दूसरी तरफ पूर्वी दर्शन की वो प्रतीकों वाली अनुभव पर आधारित भाषा।
लेकिन ये समझना जरूरी है, जैसे आपने कहा, कि वो ये साबित नहीं कर रहे कि साइंस ने अध्यात्म को प्रूफ कर दिया है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका मकसद वो नहीं है। वो बस ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये दोनों रास्ते, जो बिल्कुल अलग लगते हैं, जब आप उनकी गहराई में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक जैसी, एक यूनिफाइड, जुड़ी हुई, गतिशील सच्चाई की तरफ इशारा करते लगते हैं।
दिलचस्प।
तो अगर हम संक्षेप में कहें द डाओ ऑफ फिजिक्स करती क्या है, तो देखिए, ये किताब 20वीं सदी की भौतिकी के जो दो बड़े पिलर हैं, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स, और पूर्वी रहस्यवादी परंपराएं जैसे हिंदू, बौद्ध और ताओ धर्म के जो मूल विचार हैं, उनके बीच जो हैरान करने वाली समानताएं हैं, उनको सामने रखती है।
ओके, तो किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि सदियों से हमने जैसे पश्चिम के विज्ञान को तर्क और विश्लेषण का रास्ता माना।
हाँ, बाहरी दुनिया को समझने का।
बिल्कुल, और पूरब के अध्यात्म को अंदरूनी अनुभव और जुड़ाव का रास्ता। कैपरा कह रहे हैं कि ये दोनों रास्ते जो इतने अलग दिखते थे, अब एक ऐसी समझ पर आके मिल रहे हैं जहां ब्रह्मांड टुकड़ों में बटावा नहीं है, बल्कि वो एक है, अविभाज्य है, गतिशील है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक जाल की तरह।
सही कहा, ये उस पुरानी सोच को सीधी चुनौती देती है जो न्यूटन के टाइम से चली आ रही थी।
कौन सी सोच?
वो मशीन वाली।
हाँ, कि ब्रह्मांड एक बड़ी मशीन है जिसके अलग अलग पुर्जे हैं जो अपने अपने नियमों से चल रहे हैं। मन अलग, पदार्थ अलग, देखने वाला अलग, देखी जाने वाली चीज अलग।
क्वांटम फिजिक्स ने तो इस सोच की बुनियाद ही ला दी है।
बिल्कुल, और उसकी जगह जो नई तस्वीर उभर रही है।
हाँ, जो तस्वीर उभर रही है वो बिल्कुल अलग है।
और कैपरा कह रहे हैं कि ये जो नई वैज्ञानिक दृष्टि है, ये असल में उस प्राचीन समझ की ही एक नई झलक है जो हजारों सालों से पूर्वी दर्शन के केंद्र में रही है, जैसे विज्ञान अनजाने में उन सत्यों को फिर से खोज रहा हो।
बिल्कुल, एक तरह की रीडिस्कवरी कह सकते हैं।
तो किताब हमें एक सफर पे ले जाती है ना?
Exactly.
कहाँ से शुरू करती है?
हाँ, एक वैचारिक सफर कह सकते हैं। शुरुआत होती है क्लासिकल फिजिक्स से।
अच्छा, न्यूटन वाली?
हाँ, न्यूटन का वो जाना पहचाना ब्रह्मांड जहाँ सब कुछ घड़ी की तरह टिक टिक चलता है, ठोस चीजें, पक्के नियम, एक तयशुदा स्पेस और टाइम। ये नजरिया बड़ा कामयाब रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अधूरा था। फिर 20वीं सदी में दो बड़े धमाके हुए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया।
कौन से?
पहला था आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, मतलब रिलेटिविटी।
हाँ, ये तो सुना है।
इसने बताया कि भाई स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा गया।
अच्छा।
और सबसे बड़ी बात कि पदार्थ यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
E=mc2।
हाँ, ये फॉर्मूला तो बहुत मशहूर है।
बिल्कुल।
और गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का मुड़ना है वजन की वजह से। इसने हर चीज के निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट होने का विचार ही तोड़ दिया, सब कुछ रिलेटिव हो गया।
बापरे, ये तो सच में क्रांतिकारी था। और दूसरा?
दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था क्वांटम मैकेनिक्स।
हाँ, क्वांटम, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है।
हाँ, ये हमें ले जाता है परमाणुओं की दुनिया में, एटम्स की, और उनसे भी छोटे कणों की अजीब दुनिया में, जहाँ हमारे रोजमर्रा के नियम काम ही नहीं करते।
अच्छा, क्या होता है वहाँ?
वहाँ कुछ बहुत ही अनोखी बातें सामने आती हैं।
जैसे?
जैसे सबसे पहले तो ये कि जिन्हें हम ठोस कण या पार्टिकल समझते थे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन,
हाँ,
उनका स्वभाव दोहरा है, ड्यूअल नेचर।
दोहरा मतलब?
मतलब कभी वो एक नन्हे कण की तरह व्यवहार करते हैं, एक बिंदु की तरह, तो कभी एक फैली हुई लहर, एक वेव की तरह।
है? एक ही चीज, कण भी और लहर भी?
हाँ, और ये इस पर निर्भर करता है कि हम उन्हें देख कैसे रहें या नाप कैसे रहें।
अरे, ये कैसे हो सकता है? मतलब हमारे देखने से चीज बदल जाती है?
बिल्कुल, सोचिए जरा, ठोस चीज का विचार यहाँ धुंधला पड़ जाता है।
कमाल है। और क्या है इस क्वांटम दुनिया में?
फिर एक और अजीब बात, निश्चितता, सर्टेनिटी, वो गायब हो जाती है।
निश्चितता गायब मतलब?
मतलब क्वांटम मैकेनिक्स ये नहीं बताती कि कोई कण ठीक ठीक कहाँ है या कहाँ जाएगा, वो सिर्फ उसके कहीं होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बताती है।
अच्छा, तो पक्का कुछ नहीं पता?
पक्का नहीं, न्यूटन की जो पक्की तयशुदा दुनिया थी, उसकी जगह अब संभावनाओं और अनिश्चितता ने ले ली। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना?
हाँ, सुना तो है।
वो यही कहता है कि हम एक ही समय में किसी कण की सही सही जगह और सही सही रफ्तार दोनों को एक साथ जान ही नहीं सकते। एक को जानने की कोशिश करो तो दूसरा धुंधला हो जाता है।
बाप रे, तो सच में बहुत अजीब है।
और रुकिए, सबसे गहरा मोड़ तो अब आता है।
और भी है?
हाँ, इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी पर्यवेक्षक का प्रभाव।
ऑब्जर्वर इफेक्ट, इसका क्या मतलब?
इसका मतलब ये कि क्वांटम फिजिक्स ये दिखाती है कि देखने वाला यानी ऑब्जर्वर कोई अलग न्यूट्रल दर्शक नहीं है।
तो फिर?
देखने का जो काम है, जो एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वही उस चीज को प्रभावित करता है जिसे देखा जा रहा है।
क्या मतलब, असलियत क्या है ये इस पर भी निर्भर करता है कि उसे देखा कैसे जा रहा है?
हाँ, यहाँ आकर वो सदियों पुरानी दीवार ढह जाती है जो देखने वाले कर्ता सब्जेक्ट और देखी जाने वाली चीज कर्म ऑब्जेक्ट को अलग करती थी। ये सोचना ही अपने आप में कितना मतलब दिमाग घुमा देने वाला है।
हाँ यार, ये तो सच में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, क्या पूर्वी दर्शन में भी ऐसी कोई सोच मिलती है?
बिल्कुल, और यहीं से कैपरा पूर्वी दर्शन की ओर मुड़ते हैं। वो हमें हिंदू, बौद्ध और ताओ धर्म की कुछ मूल अवधारणाओं से मिलाते हैं और दिखाते हैं कि वो क्वांटम फिजिक्स की इन अजीब खोजों से कैसे मतलब एतोनामुआ गूंजती हैं।
अच्छा, बताइए जरा, जैसे हिंदू धर्म में?
हाँ, हिंदू धर्म में वो ब्रह्म की अवधारणा पर जोर देते हैं।
ब्रह्म मतलब वो परम सत्य?
हाँ, वो एक परम अविभाज्य निराकार सत्य जिससे सब कुछ निकला है और जिसमें सब कुछ एक है, और आत्मा जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है वो भी अंततः ब्रह्म से अलग नहीं है, और माया का विचार जो हमें इस एकता को भुलाकर दुनिया को अलग अलग टुकड़ों में देखने का भ्रम देती है।
हाँ, माया और शिव का नृत्य, उसका भी जिक्र है।
बिल्कुल, वो शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य, सृष्टि और विनाश का वो लगातार चलने वाला लयबद्ध खेल, जो ऊर्जा के बनने और बिगड़ने का प्रतीक है, कैपरा को इसमें एक गहरा कनेक्शन दिखता है।
अच्छा,
और बौद्ध धर्म?
बौद्ध धर्म में कैपरा प्रतीति समुत्पाद, मतलब परस्पर निर्भरता के सिद्धांत को उजागर करते हैं।
डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं इसे।
इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर, कारणों और स्थितियों पर निर्भर है। सब कुछ एक विशाल आपस में जुड़े हुए जाल का हिस्सा है।
सब कुछ जुड़ा हुआ है।
हाँ, और साथ ही अनित्यता का सिद्धांत कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, इम्परमनेंस। और शून्यता, शून्यता की गहरी समझ।
शून्यता, ये तो सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है।
हाँ लगता है, पर इसका मतलब खालीपन नहीं है। इसका मतलब है कि चीजों का अपना कोई ठोस अंदरूनी स्वतंत्र अस्तित्व, इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। उनका होना सिर्फ इस जाल में ही परिभाषित होता है।
ओके, ये थोड़ा गहरा है। और ताओ धर्म?
ताओ धर्म में वो दाओ की बात करते हैं।
दाओ, ये क्या है?
ये कोई भगवान नहीं है, ये ब्रह्मांड की वो मूलभूत सहज प्रक्रिया है, वो प्राकृतिक प्रवाह या मार्ग, द वे है, जिसके अनुसार सब कुछ चलता है।
अच्छा।
और यिन और यांग का सिद्धांत।
हाँ, वो सिंबल तो देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला।
हाँ, वो दो विपरीत लगने वाली शक्तियां हैं, जैसे अंधेरा रोशनी, स्त्री पुरुष, निष्क्रिय सक्रिय। लेकिन वो असल में दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और एक लगातार बदलते संतुलन में मिलकर ही ब्रह्मांड को चलाती हैं।
वाह, तो मतलब क्वांटम फिजिक्स की वो अजीब बातें हैं
जी।
और ये सदियों पुरानी फिलॉसफी।
हाँ, अब आता है किताब का सबसे रोमांचक हिस्सा, जहां कबरा इन दोनों दुनियाओं के बीच सीधी स्पष्ट समानताओं की रेखाएं खींचते हैं।
अच्छा, कौन कौन सी समानताएं हैं?
पहली और शायद सबसे गहरी समानता है सभी चीजों की एकता और परस्पर जुड़ाव।
एकता और जुड़ाव?
हाँ।
क्वांटम फिजिक्स में एंटैंगलमेंट जैसी चीजें होती हैं।
एंटैंगलमेंट, ये क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि दो कण, मान लीजिए वो कभी साथ थे, फिर चाहे वो कितनी भी दूर चले जाएं, एक पर कुछ करने का असर तुरंत दूसरे पर पड़ता है, जैसे वो अदृश्य रूप से जुड़े हों।
सच में तुरंत? दूरी का कोई मतलब नहीं?
हाँ, इंस्टेंटेनियस। अब सोचिए, ये बात हिंदू धर्म के ब्रह्म की एकता या बौद्ध धर्म के परस्पर निर्भरता के जाल से कितनी मिलती है। दुनिया अलग अलग चीजों का ढेर नहीं, बल्कि एक अविभाज्य आपस में गुथावा ताना बाना है।
ये तो वाकई कमाल की समानता है। और
दूसरा, विरोधाभासों से परे जाना।
विरोधाभास मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस।
हाँ, जैसे वो इलेक्ट्रॉन का एक ही समय में कण भी होना और लहर भी होना। ये हमारे या तो ये या वो वाले लॉजिक को चुनौती देता है।
सही बात है।
ये ताओ धर्म के यिन और यांग के तरह है, जहां विपरीत चीजें असल में एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह हमें सिखाता है कि शायद जीवन के विरोधाभासों को, जैसे सुख दुख, जीवन मृत्यु, इन्हें भी इसी नजरिए से देखने की जरूरत है, दुश्मन समझने की बजाय पूरक समझने की।
ये गहरी बात है। तीसरा?
तीसरा, ब्रह्मांड का लगातार गतिशील होना, डायनामिक नेचर ऑफ द यूनिवर्स।
गतिशील होना मतलब?
क्वांटम फील्ड थ्योरी बताती है कि जिसे हम खाली जगह समझते हैं, वो भी खाली नहीं है। वो ऊर्जा से भरी है, जिसमें कण लगातार पैदा हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, ऊर्जा का एक सतत नृत्य।
अरे वाह, ऊर्जा का नृत्य।
हाँ, और ये सीधे शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य की याद दिलाता है, सृष्टि और विनाश का वो निरंतर चक्र। वास्तविकता कोई ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक लगातार बहती हुई प्रक्रिया है, जैसे बौद्ध धर्म का अनित्यता का सिद्धांत या ताओ का प्रभाव। सब कुछ बदल रहा है हर पल।
बिल्कुल। और चौथी समानता?
और चौथी, भाषा की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज।
भाषा की सीमाएं मतलब?
मतलब ये कि चाहे वो क्वांटम दुनिया के अजीब व्यवहार को समझाना हो या पूर्वी दर्शन में उस परम सत्य के अनुभव को बयान करना हो, दोनों ही ये पाते हैं कि हमारी जो रोजमर्रा की भाषा है वो नाकाफी है, वो उस अनुभव को पकड़ नहीं पाती।
हाँ, ये तो है, शब्दों में कैसे बांधे उस चीज को।
बिल्कुल, इसीलिए दोनों क्या करते हैं, वो विरोधाभासी बातें, पैराडॉक्सेस करते हैं, रूपक और संकेतों का सहारा लेते हैं, जैसे ज़ेन में वो पहेलियां होती हैं, क्वान।
हाँ हाँ।
या क्वांटम फिजिक्स की गणित, दोनों इशारा करते हैं कि असली सच्चाई शब्दों की पकड़ से परे है।
तो ये चार मुख्य समानताएं हैं, एकता, विरोधाभासों से परे जाना, गतिशीलता और भाषा की सीमाएं।
हाँ, मोटे तौर पे।
तो इस पूरी खोजबीन से, इस किताब से कुछ बड़े सबक या संदेश क्या निकलते हैं, अगर हम उन्हें समेटना चाहें?
हाँ बिल्कुल। पहला और शायद सबसे जरूरी ये है कि वो जो पुरानी मशीनी सोच थी, मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू जिसे कहते हैं।
हाँ, वो दुनिया एक मशीन है वाली।
हाँ, वो अब टूट चुकी है। वो नजरिया जो दुनिया को बेजान पुर्जों का जोड़ मानता था, मन को शरीर से अलग करता था, वो न सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर अधूरा है, बल्कि शायद हमारी आज की कई समस्याओं की जड़ में भी यही खंडित सोच है, जैसे पर्यावरण का संकट, समाज का बिखराव।
चीजों को टुकड़ों में देखना। सही बात है, दूसरा संदेश?
दूसरा बड़ा संदेश है एकता और गहरा जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस। हर चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी है।
ये बार बार आ रहा है?
हाँ, क्योंकि ये बहुत केंद्रीय है। चाहे क्वांटम उलझाव हो, ब्रह्म हो या प्रतीत समुत्पाद, सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। भारत की वो पुरानी कहावत है ना, वसुधैव कुटुंबकम।
हाँ, पूरी दुनिया एक परिवार है।
ऐसा लगता है मानो विज्ञान भी अब उसी दिशा में संकेत दे रहा है। और आज की जो बटी हुई दुनिया है उसके लिए कितना जरूरी संदेश है।
बहुत ज्यादा। तीसरा?
तीसरा, वास्तविकता का स्वभाव ही गतिशील है, बदलना ही उसका नियम है, डायनामिक्स। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
जैसे नदी का बहना?
बिल्कुल, जैसे ताओ का बहाव है या क्वांटम कणों का बनना बिगड़ना। इसका विरोध करने के बजाय शायद हमें इस प्रवाह के साथ जीना सीखना होगा। यह हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने में मदद कर सकता है, ज्यादा लचीला बना सकता है।
एक्सेप्ट करना बदलाव को। चौथा?
चौथा, विरोधाभासों को स्वीकारना और उनमें संतुलन देखना, पूरकता, कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ ऑपोजिट्स।
मतलब या तो ये या वो की जगह ये भी और वो भी।
हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग भी है और कण भी। जैसे दिन और रात मिलकर ही पूरा दिन बनाते हैं, जीवन में भी सुख दुख अच्छा बुरा अक्सर साथ साथ चलते हैं। इन्हें अलग अलग खांचों में बांटने के बजाय इनकी पूरकता को समझना शायद ज्यादा उपयोगी हो।
बात तो सही है।
और पांचवा?
और पांचवा जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है वो है पर्यवेक्षक यानी देखने वाले की भूमिका,
रोल ऑफ द ऑब्जर्वर।
हाँ, वो ऑब्जर्वर इफेक्ट वाली बात।
हाँ, हम दुनिया के सिर्फ निष्क्रिय तटस्थ दर्शक नहीं हैं। क्वांटम स्तर पर हमारा देखना ही वास्तविकता को प्रभावित करता है। ये चेतना के महत्व पर, कॉन्शियसनेस पर और हमारी अपनी जिम्मेदारी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम सिर्फ दुनिया को देख रहे हैं या उसे बनाने में भी भागीदार हैं?
बापरे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इस किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो वाकई इन दोनों दुनियाओं को एक धागे में पिरोते हैं और मतलब याद रह जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत पावरफुल आइडियाज हैं। जैसे एक विचार है, कपरा कहते हैं, उप परमाणु जगत यानी एटम से भी छोटी दुनिया, अविभाज्य, एक दूसरे पर असर डालने वाले और हमेशा गतिशील हिस्सों की एक व्यवस्था है जिसका देखने वाला परिवेशक एक अभिन्न अंग है।
ये तो जैसे पूरी किताब का सार एक वाक्य में आ गया। सब कुछ जुड़ा है, सब बदल रहा है और हम दर्शक नहीं, हिस्सा हैं।
बिल्कुल। एक और विचार, क्वांटम सिद्धांत ब्रह्मांड की एक बुनियादी एकता को दिखाता है। ये बताता है कि हम दुनिया को स्वतंत्र रूप से मौजूद सबसे छोटी इकाइयों में तोड़ नहीं सकते।
फिर वही जुड़ाव वाली बात कि कोई भी चीज अकेली नहीं है, उसका मतलब दूसरों के साथ उसके रिश्ते में ही है।
सही कहा। और वो सबसे काव्यात्मक, सबसे ब्यूटीफुल कंपैरिजन जो है, शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य ही उप परमाणु पदार्थ का नृत्य है। सृष्टि और विनाश का वो निरंतर नृत्य जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है।
हाँ, ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले का एक आध्यात्मिक रूपक आज की फिजिक्स की खोजों से इतना और रेजोनेट कर सकता है। ये जैसे विज्ञान और कला का संगम हो।
बिल्कुल। और आखिर में ये बात, आधुनिक भौतिक विज्ञानी और पूर्वी रहस्यवादी दोनों ही भाषा की सीमाओं को महसूस करते हैं और अपनी बात कहने के लिए विरोधाभास और रूपक का सहारा लेते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि शायद जो अल्टीमेट रियलिटी है वो हमारी बुद्धि और भाषा की पकड़ से हमेशा थोड़ी आगे ही रहेगी। एक तरह की विनम्रता सिखाता है।
सही है। ये सारे विचार हमें झकझोड़ते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद असलियत हमारी रोजमर्रा की जो सीधी साधी समझ है उससे कहीं ज्यादा गहरी है, ज्यादा जुड़ी हुई है और हाँ, ज्यादा जादुई भी है।
तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतने गहरे, थोड़े फिलोसॉफिकल से लगने वाले विचार है, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या इनसे कुछ प्रैक्टिकल हेल्प मिल सकती है?
हाँ, मुझे तो लगता है बिल्कुल मिल सकती है, कई तरीकों से।
जैसे?
पहला तो ये हमारी खुद की पहचान की समझ बदल सकता है।
आइडेंटिटी।
कैसे?
अगर सब कुछ जुड़ा है तो मैं सिर्फ एक अलग थलग मैं नहीं हूँ, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का, समाज का, प्रकृति का हिस्सा हूँ। ये सोच अकेलेपन को कम कर सकती है, दूसरों के प्रति ज्यादा हमदर्दी, ज्यादा जुड़ाव महसूस करा सकती है।
मैं से हम की तरफ।
हाँ। दूसरा, पर्यावरण के प्रति हमारी सोच बदल सकती है, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस।
अच्छा, वो कैसे?
अगर प्रकृति हमसे अलग नहीं बल्कि हम उसी का हिस्सा हैं, तो उसे नुकसान पहुंचाना असल में खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। ये हमें पर्यावरण बचाने के लिए ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बना सकता है। भारत में तो प्रकृति को पूजने की परंपरा रही है, ये वैज्ञानिक नजरिया उसे और मजबूत करता है। बात तो सही है। तीसरा,
ये हमें अनिश्चितता और बदलाव को स्वीकार करना सिखा सकता है। एक्सेप्टिंग चेंज एंड अनसर्टेनिटी।
हाँ, क्योंकि जीवन में सब कुछ पक्का तो होता नहीं।
बिल्कुल, जिंदगी में हमेशा सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होता। क्वांटम दुनिया की तरह जीवन भी संभावनाओं से भरा है। बदलाव से डरने और लड़ने की बजाय हम उसके साथ तालमेल बिठाना सीख सकते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल बन सकते हैं।
बहाव के साथ बहना। चौथा,
ये हमें समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक व्यू अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
होलिस्टिक व्यू मतलब
चीजों को टुकड़ों में देखने के बजाय पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करना, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सिर्फ शरीर नहीं मन का भी ख्याल रखना, या समाज की समस्याएं हो, सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं जड़ को समझना।
अच्छा, मतलब कनेक्टेड तरीके से सोचना।
हाँ, और आखिर में ये किताब उन लोगों के लिए एक राह दिखा सकती है जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं।
हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं।
ये दिखाती है कि विज्ञान भी आश्चर्य, विस्मय और गहरे अर्थों से भरा हो सकता है, और तर्क और सहज ज्ञान दुश्मन नहीं बल्कि साथी हो सकते हैं। एक बैलेंस्ड नजरिया मिल सकता है।
ये तो बहुत जरूरी बात है। सच कहूँ तो मेरे लिए इस पूरी चर्चा में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो यही है कि क्वांटम फिजिक्स के इतने अजीब, इतने काउंटर इंट्यूटिव लगने वाले नतीजे हजारों साल पुरानी पूर्वी सोच से कैसे इतने मिलते जुलते हैं।
हाँ, ये वाकई चौंकाता है।
खासकर वो शिव के नृत्य वाली बात। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन ऋषियों ने अपने ध्यान और अंतर्दृष्टि से वो देख लिया था जिसे आज हमारे वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में अपने उपकरणों से देख रहे हैं। ये सोचना ही कितना रोमांचक है।
बिल्कुल, और मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि दुनिया को समझने के लिए सिर्फ दिमाग काफी नहीं है, दिल भी चाहिए। मतलब तर्क और विश्लेषण जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सहज ज्ञान, इंट्यूशन, अनुभव और जुड़ाव की भावना, वो भी उतनी ही जरूरी है।
हाँ, दोनों का बैलेंस।
हाँ, ये दोनों मिलकर ही हमें पूरी तस्वीर दिखाते हैं, और आज की दुनिया में जहां इतना बिखराव है, इतना टकराव है, ये एकता और जुड़ाव का संदेश शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
सही कहा। और अंत में एक सवाल जो मेरे मन में घूम रहा है।
हाँ।
अगर क्वांटम सिद्धांत सही है और हमारा देखना ही वास्तविकता को रचने में भूमिका निभाता है, तो सोचिए हमारे हर रोज के विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारी नीयत का इस दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। क्या हम अनजाने में अपनी दुनिया को लगातार रच रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है ना।
हाँ, ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।